The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, Verses 7 and 8, on the topic of Krishna's sporting pastimes with the cowherd boys. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Haridwar, India, on May 1st, 2000.
और उस समय बच्चे चार वर्ष से खेलता ताली बजाते हैं और फिर नाचते हैं तो कहते हैं कि हरे कृष्ण तुम तो मयूर से बहुत अधिक सुंदर नाचते हो, मयूर क्या नाचेगा, ऐसा कहते हैं। तो भगवान उनके साथ नाचते हैं तो कहते देखिए देखिए ये मयूर नाच रहे हैं और हरिणिया आप पर प्रेम से देख रही है और कष्ट कोटिल रहा और मयूरों के झुंड का झुंड नहीं कोयलों का झुंड आपका स्वागत कर रहा है कुरु कुरु करके या कृष्ण कृष्ण करके क्योंकि आप इनके घर में आए। यही तो भक्तों का स्वभाव होता है। ज्ञान सतान निसर्ग, सतान का अर्थ भक्त वैष्णव, यही वैष्णव का स्वभाव होता है। उनके घर में कोई आता है अतिथि तो उसका भी इस तरह से स्वागत करते हैं। जो चीज उनके पास है वो सारा अर्पित कर रहे हैं। हरिणियों के पास वास्तव में बेचारे दीन है लेकिन उनके पास जो दृष्टि है वह एक बहुत बड़ा धाम है और मंगल होता है तो आपका मंगल कर रहे हैं, आपका प्रिय कर रहे हैं। उनके पास यही दृष्टिपात है और कोयल के पास कंठ है सुक्तेष्ट कोटि का सुक्तेष्ट अथवा इसका आकर्षण गोपियों के साथ करना पड़ेगा। हमारे आचार्य गण बहुत ही दक्ष हैं श्रीमद् भागवत समझने में। गोप्य इक्षणेन ते प्रियं कुर्वन्ती और सुक्तैश्च जथा, जैसे गोपियां निरीक्षण द्वारा आपका प्रिय पत्ती हैं और बहुत सुंदर बातें बोलती हैं जैसे गोपी गीत में बोला है जवर समय, तो वैसे ये कोयल भी बोल रहे हैं और हरिणियां देख रहे हैं। तो हरिणियों का निरीक्षण और कोयल का बोलना यह सब सुन करके देख करके श्री कृष्ण को श्री गोपी जनों का स्मरण हो रहा है। वास्तव में श्री गोपी जन विरह से बिल्कुल मर रही है दिन के समय, अतः भगवान कम से कम उनका स्मरण करते रहते किस तरह से दिन बिताती। पलक गिरना उनके लिए कोटि युग जैसा लगता है दर्शन के समय, और जब दर्शन नहीं हो रहा है वन में गए हैं तो उनको कितनी व्याकुलता होती होगी। और वो भी यह स्मरण करके कि हमारे प्रियतम के चरण कमल में कंटर या पत्थर चुभ रहे होंगे, भगवान उनका इस तरह से अगर स्मरण करें क्षण क्षण में तो कौन आश्चर्य। तो प्रेम के पिपासन है श्री कृष्ण, जो उनसे जैसा प्रेम करता है वैसे करते हैं। इसलिए अपने अग्रज के सामने भी गोपी प्रेम के आवेश में भगवान अपने को छिपा नहीं पा रहे, प्रकट हो जा रहा है। यह रस केवल श्रीमद् भागवतम में है। स्थान स्थान पर गोपियों के महाभाव का दिग्दर्शन कराते चलते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो तीन नव प्रमाण कर रहे हैं चकार से और भी जो वृंदावन में पशु पक्षी है सब का है और सुक्तैश्च वाणी से कोयल आपका स्वागत कर रहे हैं, नृत्य से मयूर और निरीक्षण से हरिणिया। इसी प्रकार से वृंदावन में जिसके पास जो धन है जो विशेषता है सबके द्वारा आपकी पूजा कर रहे हैं आपका सम्मान कर रहे हैं। यान ही सतान निसर्ग, यही सज्जनों का निसर्ग होता है स्वभाव होता है। धन्य बनव कसर, ये वनवासी धन्य मतलब इस पृथ्वी पर इनका जीवन कृतार्थ है। बताइए वन में रहने वाले मयूर के पास क्या धन है, हरिणियों के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या धन है, क्या गुण है, कुछ नहीं। वन में रहते हैं घास चलती और कोयल वृक्ष वृक्ष पर बैठता है गाता है, लेकिन भगवान आज अपने मुख से धन्य बता रहे हैं तो वनवासियों को। धन्या विषय ज्ञान ही सताम विषय। कभी शहर में रहने वाला की प्रशंसा भगवान नहीं किए हो, धन्य बनो को बन ही जिनका वो कह है निवास ही धन्य है। क्या बाकी छोड़े उनके पास कौन सा ऐसा धन था जिसे वो किसी को अर्पित नहीं किए, इसलिए भगवान आज धन्य बोल रहे हैं, धन्य है। यदि उस भगवान के नित्य पढ़कर है और कृष्ण का ही सब कुछ दिया गया है और कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने बड़े करो की सेवा से इतने कर्तव्य हैं कि इस तरह बोल रहे हैं, क्षण क्षण में धन्य वनवासी धन्य धन्य बनो कृष्ण ज्ञान ही शताम निसर्ग। उसको भगवान इस तरह से कह रहे हैं, इक्षण प्रसन्न नेत्र दृष्टिया प्रियम प्रीति भाव वे तो जनयंते दृष्टि सौंदर्यत कि श्री गोपिका स्मरण। क्या प्रिय कर रही है हरिणिया, इसको शेपा सनातन गोस्वामी भगवान की बातों की व्याख्या कर रहे हैं। इक्षण प्रसन्न नेत्र दृष्टिया, प्रसन्न नेत्र से देखना, इससे भगवान को अच्छा लग रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अथवा श्री गोपिका स्मरणत, श्री गोपिकाओं का स्मरण करा रहा है, हरिणिमा का दृष्टि से देखना, निरीक्षण करना, यह भगवान को प्रिय है। एवं अग्रे भी ये बात आगे भी लेनी चाहिए, जिस समय वो कहेंगे भुजे वर्णन करेगा आगे वाला श्लोक में, तो श्रीपा सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं, वो मध्य भी बाद में भी ऐसा ही भाव लेना चाहिए। सुक्त ही मधुर स्त्रोत्र विशेष सदृश ही तम स्वय तत्कृत गृहमागता है अभ्यागत से प्रीते तम प्रति निज निजोत्तम द्रव्य समर्पणोपपत्ति। गृहमागता है अपने घर में वे आए, तो ये वनवासी मान रहे हैं कि वृंदावन हमारा घर है, गृह है, और हमारे गृह में कृष्ण आए तो निज निज उत्तम द्रव्य समर्पण को पाते, अपने पास जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु है उसे समर्पित कर रहे हैं। जन्मते तव गृहम प्रत्यागता, या आप अपने घर में आए हैं और आपके घर में रहने वाले ये नित्य सेवक हैं तो आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वस्व गृहे तवरणार्थम, अथवा ये जो आपका स्वागत कर रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं अपने अपने घर में आपको निमंत्रण दे रहे हैं। सारा सारा वन तो एक व्यक्ति का घर नहीं है, वनवासी भी कुछ बांटे रहते हैं, इधर हरिणी और आती है चाहे मयूर उधर रहते हैं, तो अपने अपने घर में तव आगमनार्थम आपको बुलाने के लिए आपका स्वागत करते हैं। अतः एकता गोपी में भवंती इतनी बरोगी, अतः गोपी बने यह भगवान बर दे रहे। इसी पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान बर दे रहे, स्वागत क्या स्वीकार कर रहे हैं, बर दे रहे हैं। और भगवान के अधिकार में है किसी को गोपी बनाना है या मित्र लीला में किसी को लेना, ये वर है। स्वभाव निरीक्षण स्त्रीत्व, तो हरिणिया कैसे गोपी बनेगी, क्योंकि स्वभाव से देखती है और स्त्री है। जब गोप्य इव इति सर्वत्र दृष्टांत, अथवा गोप्य इव ये सब जगह दृष्टांत बैठेगा, केवल हरिणियों के लिए नहीं। तो नृत्यम तभी ये मयूर या मयूरियां ऐसे नाच रहे हैं जैसे गोपियां नाचती हैं, वास्तव से भी लेना पड़े। ये सर्वत्र दृष्टांत है, यह सुतश्च कोकिल गड़ा, कोकिल ऐसे बोलते हैं जैसे कोकिल बदली गोपियां बोलती, उनकी बोली कोयल से भी अधिक सुंदर। तो श्रीपा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वत्र वो दृष्टांत एवं तासाम तत्त अखिल संपत्ति असर्वेभ्य अत्यभ्य वैशिष्ट मंगलादि नाम च परम नृत्यादेश सूचित। इस प्रकार श्री गोपी जनों के अक्षर संपत्ति का वर्णन करके सबसे श्रेष्ठ सूचित कर रहे हैं भगवान, क्योंकि मयूर के पास केवल नृत्य है, कोयलों के पास कंठ है और हरिणियों के पास सुंदर अवलोकन है, लेकिन श्री गोपी जन में सब प्रेम नृत्य है और मधुर कंठ है, स्वर है और प्रेमपूर्वक देखना सब, इसलिए गोपियां परम धन्य है। जब इंगित विशेषता के कारण वनवासी धन्य है तो समस्त विशेषताओं से युक्त होने के कारण गोपी जन क्यों नहीं धन्य थे धन्य, ये भाव है कहने का। गोपियां युवा सब जगह ले जा करके अर्श कर रहे हैं। मयूरादी नाम जो परम नृत्यादि सुव सौष्ठव सूचित, मयूर आदि का तो केवल नृत्यादि के बातों में सौष्ठव सूचित किया गया है। ततश्च सदा तत् प्रिय रहस गीत विशेष गायता भवंतु इति बड़ा, ये सदा आपके प्रिय रहस्य गीत गायक बने, आप जहां रहे गाते रहे नाचते रहे आपका बने या बर धन्य परम भाग्यवंत ऐसा एक उपयुक्त है इत्यादि न, इनके लिए उपयुक्त ही है, क्योंकि ईयान ही सतम विसर्ग ईयान ही जत, क्योंकि स्वभाव स्वभावता ही विषण परम साधुत्वादी साधुत्वादी भाव ईयान सतम विसर्ग, ये कोई बहुत प्रयास करके या श्रवण कीर्तन करके आपके प्रति भाव प्राप्त नहीं किए, स्वभाव है यही भक्तों का वैष्णव का, इनका स्वभाव है, स्वभाव बस नाच रहे हैं और आपको समर्पित कर रहे हैं। ये दूसरे के रूप देव से श्री कृष्ण का भजन करना सेवा करना एक और बात है और अपने स्वभाव में आ जाए कृष्ण की सेवा करना है दूसरी बात है। तो इनके लिए ठीक है, क्योंकि सज्जन है साधु शिरोमणि जब धन्य परम प्रेम धन जुटता है, अथवा धन्य का अर्थ है कि इनके पास परम प्रेम धन है, जिसके पास धन हो धन्य, इनके पास आपका परम प्रेम है इसलिए ये धन्य, अथवा परम प्रेम धन जुगता भवंतु इति वृंदावन्यान सर्वांगम प्रत्येकम वर, वृंदावन के समस्त जीवन को भगवान ने वर दे रहे हैं कि परम धन से जुक्त हो, परम प्रेम धन से जुक्त हो, ही जस्मात् सताम प्रेम भक्ता नाम एवं स्वभाव भवति इति भाव, क्योंकि प्रेमी भक्तों का ही ऐसा स्वभाव होता है, अतः भगवान एक प्रकार से वर दे रहे हैं। घूमते जाएगा, पहले वृक्षों के को धन्यवाद दिया, इसके बाद एक श्लोक में पूर्ण रूप से भावरों को और तीसरे श्लोक में मयूर हरिणिया और कोयल और चकार से अनुक्त समुच्चय जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, च से सौ को कह रहे हैं, जिसके पास जो भी विशेषता है वो कह दिया भगवान, यह भक्तों के लिए छूट दे रहे हैं भगवान के अभाव, नित्य लीला चिंतन करें, मानसिक चिंतन करें और सोचा करें कैसे और लोग नाचे होंगे गाये होंगे कृष्ण का किस प्रकार स्वागत किए होंगे, सभी कृष्ण के पास आते हैं। अच्छा, अब सामान्य रूप से सबकी धन्यता का निरूपण कर रहे हैं, सबसे पहले पृथ्वी की ओर दृष्टि डालकर भगवान कहते हैं, धन्य यमद्धरणी त्रिवीरुधस्तव पाद स्पृशो त्रिमलता कर जाष्टा नद्यो द्रय खुजा सदयावलोक गोप्यं तन्वीर भुजयो रतुज सुजाशि अयम धरणी अद्य धन्य, आज यह पृथ्वी धन्य है, मथुरा वर्तिनी या ब्रजमंडल की यह भूमि आज धन्य, अथवा ब्रज इस भूमि पर स्थित है इसलिए सारी धरणी धन्य, आप देशों के लगा तो कह रहे हैं पहले से ही धन्य है लेकिन वास्तव में आज यह धन्य हुई है, क्यों तो पाद स्पृशम चरण का स्पर्श पाकर के आज धरती धन्य हो गई, धन्य हो गई। और इसके साथ ही साथ तृण वीर उद्धव तृण है विरुद्ध बीरवाई, भोजपुरी में बीरवाई कहते हैं, इसी विरुद्ध शब्द का अनुवाद है जो जमीन पर फैलते हैं। जमीन पर फैलने वाले तीन लता आदि धन्य है, क्यों तो पादस स्पृश आपके चरण कमल का स्पर्श भी प्राप्त होता है। तो चरण कमल के स्पर्श से पृथ्वी धन्य है, त्रिय और विरुद्ध धन्य है, ध्रुव लता है, कर्जा भी वृष्टा। और इस ब्रज के ध्रुव और लता वृक्ष और लताएं धन्य है, क्यों? क्योंकि उनको आपके मखों का स्पर्श प्राप्त होता है। करज कर में जो जन्म ले उसको करज कर, हाथ में जन्मते रहते हैं नख और आदमी काटता रहता है तो करज कहते हैं। करात जन्म जस्य स कर्ज, कर्जे ना नखे ना ध्रुवलता धन्य, हाथ का स्पर्श पाकर ध्रुवलता धन्य हो गए, चरण का स्पर्श पाकर विरुद्ध तीन लता दी और भूमि धन्य हो गई। और नदे प्रया खग मृगा सदयाव हो गए, और आपके स्नेह भरे दृष्टिपात से नदी नदियां नद्य और अद्रय पर्वत समूह गिराज इत्यादि और खग मृगा और खग पक्षी और मृग धन्य हो गए। तो सदयावलोक से दया सहित अवलोकन से इन सब धन्य हो गए। दूरवर्ती है इसलिए दृष्टिपात द्वारा धन्य करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान जाते हैं सब जगह, उनको भी चरण का स्पर्श नहीं होता है, जिसमें अद्रय अपमुख है, गिरिराज पर भगवान घूमते हैं तो उनको भी अरण्य पर्वतों को चरण स्पर्श सुना है, नख का भी स्पर्श सुना है, कभी सोते हैं पत्थर पर कभी बैठते हैं, सर्वांग का संस्पर्श सुना है, परंतु सब समय थोड़ी सी दूरी का ध्यान करके भगवान दिखाकर पा रहे हैं ये सब पर्वत वन खर वृक्ष सब धन्य है आपके स्नेह भरे दृष्टिपात। और गोपियों परिणय भुज में रजत श्रेयाश्री, और गोपियां धन्य है आपकी दोनों भुजा के अंतर से पक्ष स्थल से। आप जब गोपियों का आलिंगन करते हैं तो आपके आलिंगन से गोपियां धन्य है, जिस आलिंगन की स्प्रिया स्त्री भी करती है पर उन्हें सुलभ नहीं हुआ। महालक्ष्मी जी आज तप तप कर रही है भगवान का स्पर्श पाने के, चरण रज का स्पर्श पाने के, और उनको नहीं मिला। देखिए विचार कीजिए भगवान का आवेश श्री गोपियों में, आपके चरण स्पर्श पृथ्वी धन्य है, त्रीण और विरुद्ध धन्य है, और आपके नख स्पर्श से वृक्ष और लताएं धन्य है, स्नेह भरे दृष्टि से खग मृग नदी पर्वत सब धन्य है, और आपके वक्ष स्थल से गोपियां धन्य है। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान का नित्य विहार और गोपीजनों के साथ संस्पर्श और नाना प्रकार की लीलाएं चलती ही रहती थी। गोपियों के साथ भगवान नित्य किशोर है, और बच्चों के साथ सखाओं के साथ पवन अवस्था में, यही तो भगवान की भगवत्ता है। तो ये गोपियों का भाव, गोपियों का स्मरण यदि भगवान के हृदय पर पूर्ण अधिकार नहीं किए नहीं होता है, तो श्री बलराम जी के सामने भगवान इतना खुल करके नहीं बोल पाते जैसा बोल रहे। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में धन्य है तो श्रीकृष्ण के अंगों के साथ संबंध के कारण, वो चाहे दृष्टि पड़ी हो उस पर, या चरण का स्पर्श हुआ हो, या नाक का स्पर्श हुआ हो, कुछ भी जिसका जितना भगवान के अंग से संबंध हुआ उतना ही धन्य। धन्य ये मध्य धर्म तीर्ण विरुद्धस्त इसको ठीक है। एवं प्रथम दृष्टानाम हृदय तमाना विशेषतो महात्म अनुबल पुनः हर्ष भरे न सामान्यतः सर्वेशा अपनी बनाए थे। जो तत्काल में हृदय में धसे हुए थे देखते करके वृंदावन में, तो उनका विशेष वर्णन किए। मयूर सामने आ रहे थे, कोकिल गा रहे थे गुरुपुर समय, और हरणिया सामने आ रही थी, भावरे साथ में थे, और वृक्षों से भी गुजर ही रहे थे, इसलिए इनको हृदय तबाना भगवान के हृदय में ये धस रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनकी महिमा का वर्णन किया। लेकिन अब सामान्यतः सर्वेशम अपनी बढ़ती सामान्य रूप से सबकी प्रशंसा कर रहे हैं। जद वह किम विशेष वर्णने न सर्व अतृप्त धन्य धन्यता, अथवा एक भाव है तुम्हें क्या विशेष वर्णन करूं हे प्रभु, हे हमारे अग्रज, इस वृंदावन के समस्त वस्तु सर्वत्र सब वस्तुएं सभी जीव धन्य धन्य इयम, पृथ्वी के लिए इयम शब्द दे रहे, इयम स्त्रीलिंग एक वचन, इयम हम धरणी धन्य कदा धन्य अभुन अद्य अद्य कार्य अधुना, तो श्रीपाल सनातन गोस्वामी लिखते हैं इयम आदितो वर्तमान विचित्र अवतार भूषिता, यह पृथ्वी तो बहुत काल से है, आदि काल से है, और आपके विचित्र विचित्र अवतारों द्वारा यह अलंकृत हुई है, सारे अवतार इस पृथ्वी पर हुए, आपने बारंबार अवतार समूह लेकर इस पृथ्वी को धन्य किया, और यहां तक कि श्री वराह उद्धृत्य रमिता, श्री वराह के रूप में आपने अपने दंतों पर इसको धारण किया है, इसको सुखी किया है, और शेष रूपया त्वया शिवसी धार्य मारायति, और शेष रूप से आप इसको सिर पर धारण करते हैं, फिर भी अद्य श्री मथुरायम और तिरणित्वी, लेकिन आज यह धन्य हुई है जब आप मथुरा में अवतार लिए, इस मथुरा मंडल में जब आप आए हैं तो आज यह पृथ्वी धन्य हुई, पहले से ही कुछ कुछ धन्य थे लेकिन परम धन्य आज हुई। कहने का भाव ये केवल श्री नंद ब्रज पौरंड लीला गोपाल शब्दी में धन्य एवं भाग्यवती सर्वोत्तम, अथवा श्री नंद ब्रज में नंद गांव में पौगंड लीला द्वारा जब आप गोपाल बने हुए हैं तब यह परम भाग्यवती हुई है, नहीं तो बारह रूप से बात पर टांगने से या सिर पर उठाने से धन नहीं हुई है, सिर पर उठाने से पृथ्वी धन नहीं हुई भगवान के, दांत से पकड़ने पर धन नहीं हुई, जबकि दांत से पृथ्वी को पकड़ना बहुत मैकट्य का सूचक, बहुत निकटता सिद्ध हो रही है, एक प्रकार से भगवान चुंबन कर रहे हैं पृथ्वी का, लेकिन जब पैर से छुए तब पृथ्वी धन, पहले शायद पैर से नहीं छुए, तो सिर पर दांत पर रखे तो पैर से क्या छुए, और वो अभी भयंकर भयंकर रूप से, और जब नंद ब्रज में इतना परम सुंदर रूप प्रकाशित करके और इसका स्पर्श किए हैं, इस पर सोए हैं खेले हैं खाए तब यह धन्य हो गए इयम। अच्छा इयम का अर्थ है ब्रजवर्तिनी भूमि, 84 कोस में यह जो भूमि है यह धन्य है, और इसके संबंध से यम धरणी संपूर्ण पृथ्वी धन्य है, अद्यति सर्वत्राग्रम अपनी अयम वाक्यम, जो अद्य शब्द है आज यह पृथ्वी धन्य हुई है, तो इन सब जगह ले जाना पड़ेगा अद्य को, आज ये वृक्ष लता धन्य हुए हैं, आज धन्य हुए, नहीं तो आप तो ब्रज में रहते थे और कल्पना करते थे कि कब चलेंगे कि राज्य में और कब वृंदावन रुकेंगे, आपको गोचारण की अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन आज धन्य हो गया, सर्वत्र प्रसार द्वारा सर्वत्र घूमने द्वारा आपके दृष्टिपात आदि से सब धन्य, अथवा एक भाव लिए कि अभी लगता है कि श्री कृष्ण सब जगह यही घूमे हैं, प्रथम गुरु की लीला है, इसलिए दूर के पर्वतों को देख करके कहते हैं नदियों को ही आपके दृष्टिपात से धन्य है, बाद में आपके चरण स्पर्श आदि से धन्य होंगे, अभी दृष्टिपात से धन्य है। तो अद्य अद्य की सर्वत्र अग्रित अपनी एवं अनुवर्त्य धन्य यानी तभी वचनादि व्यक्त पृथ्वी के धन्य का व्यार आगे हम देखेंगे बहुवचन आएंगे और कुछ पुल्लिंग भी आएंगे तो वचन व्याप्य से सब जगह धन्य या धन्य या धन्य ऐसे लगा लेना चाहिए। प्रथम बार पृथ्वी के लिए धन्य कह रहे हैं तो वचन व्यक्ति से और सब जगह धन्य लगा लेना चाहिए तो और सब जगह धन्य शब्द नहीं आया है पृथ्वी के लिए धन्य शब्द आ गया है एक बार लेकिन और सबको धन्य बना रहे तो वचन व्यक्ति से उसको समझ लेना चाहिए। धन्य यम इति अपि वचनादि व्यक्ते तथा त्वदिति समासांत परिष्टम अपि यथा स्थानम आकर्षणीय यदि त्वत् पादस्पृश क्या है शब्द इसमें त्वत् पादस्पृश तो त्वत् पाद यदि समासांत शब्द है समास जुड़ा हुआ है पैर के साथ लेकिन इस त्वत् शब्द को और जगह भी ले जाना पड़ेगा त्वत् सजरा और लोग कहेंगे त्वत् कर्जा विपृष्टा त्वत् को और सब जगह आकर्षणीय इस स्थान से खिंच खिंच करके सब जगह लगाना पड़ेगा। आपके चरण स्पर्श से पृथ्वी धन्य हुई है लेकिन और जगह आपके सदैव हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं है तो यहां से त्वत् ले जाना पड़ेगा वहां आपके सदैव हम लोग से आपके कर्जा विपृष्ट से और सब धन्य तो त्वत् इति जथा स्थान आकर्षणीय इमानी त्रिनानी इसका अर्थ ये है इमानी त्रिनानी इमा विरुद्ध गुणनीय धन्य न च स्वर्गाधिवर्तीन्य दंडकादि स्थितश्च और इमा शब्द पर जो भगवान कर रहे हैं जैसा यम भर्ती के लिए लगाए तो और सब जगह वचन व्यक्ति से लगाना पड़ेगा कि इमानी त्रिनानी धन्य धन्यादि ये त्रिण धन्य सब जगह तीर्ण है सारी दुनिया में और स्वर्ग आदि में भी तीर्ण है लेकिन भगवान जो ईमान शब्द करेंगे ये तीर्ण धन्य है न तो स्वर्ग आदि वर्ती में स्वर्ग आदि में जन्म लिए हुए तीर्ण लता धन नहीं है और न तो दंड का भी स्थितिपाश्च दंडक वर्ग या पंचवटी आदि की लता धन है लेकिन उतना धन नहीं है जितना वृंदावन के ये ईमानी शब्द से व्यक्त हो रहा है। तत्र हेतु इसका कारण क्या है क्यों पृथ्वी धन्य है और क्यों त्रिलता गुणवादी धन्य है तत्र हेतु तद पादस्पृश एवं अग्रे पे अपनी व्याख्या धरण्या धन्यत्रेपि अयमेव वा हेतु धरणी धन्य है इसमें भी हेतु चरण स्पर्श है इति द्रष्टव्य असाधारण सुंदर पद ही गोष्ठा परोक्षण प्रदेश से उदित ही अलंकार विशेष संपत्ति गोष्ठ में या वन में सर्वत्र आपके सुंदर चरण कमल उभरे हुए हैं इसलिए आज यह पृथ्वी धन्य हुई है। ये तो जब केवल गोकुल में खेलते थे और वो भी साफ चरण बचपन तो साफ चरण उभरता ही नहीं था जानवर और घुटना से चौड़ते थे या हो सकता है कि ब्रज में मां जशोदा जी को जूता पहना करके भेजती होगी आजकल के लोग अपने बच्चों को मोटा मोटा स्वेटर क्या क्या लगा देते हवा भी नहीं लग पाए मोजा टोपी तो हो सकता है कि मां उनको भी मोजा पहना देती होगी इसलिए चरण भरता में होगा बच्चा है इसलिए चरण छीन भी तो बच्चा है और साफ साफ भरते नहीं पृथ्वी पर लेकिन अब सब कुछ क्लियर भर रहा है इसलिए पृथ्वी आज धन्य हुई है चरण चिन्हों से अलंकृत होगा। द्रुमा लताश्च फल पुष्पाद गले और ध्रुव वृक्ष और लता क्यों धन्य है क्योंकि आपने उनके फल और पुष्पादि को ग्रहण किया स्वीकार किया चरण चिन्ह से पृथ्वी धन्य होगी और फल पुष्प आदि ग्रहण से ध्रुव और लता भूषण व्यर्थम पत्रादि छेद नख स्पृष्ट है और आपके नख स्पर्श से धन्य हुए क्यों एक तो फल फूल आदि आपने लिया दूसरा अपना श्रृंगार करने के लिए पत्ता आदि तोड़ते हैं फूल तोड़ता है, बाप की मुख का स्पर्श पाकर के लताए और वृक्ष धन्य नद्य श्री जमुनाद्य। यहां नदियां बहुवचन है, उसका अर्थ है श्री जमुना जी आदि। अद्य श्री गोवर्धना गोवर्धनादय, खगा मयूरादय, मृगा कृष्ण सारादय, दूरस्थिता सबई सबई अवलोक नहीं धन्य, जो दूर है वे दृष्टिपात से धन्य। नद्यद्रीणाम पदार्ज स्पर्श धन्यता सद्भाव्य भी तथोक्ति प्राय दूरवर्ती पर। नदी और पर्वत आदि को भगवान के चरण स्पर्श भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त है, लेकिन फिर भी तत्काल में दूर दिखाई दे रहा है, इसीलिए भगवान कहते हैं सभी अवलोक है प्राय दूरवर्ती पर। तथा धरण्यादिशु सर्वेशु समय अवलोक संभव अभी, और पृथ्वी पर भी तो समय अवलोक कर ही रहे हैं, क्यों केवल पादर्श भी सही कर। नखा स्पर्श भी है, कभी सोते भी हैं, जैसा वर्णन आएगा इसमें कल वर्णन आएगा, भगवान सज्जा पर सोते हैं और गोप सखा चरण दबाते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई पंखा चलते हैं, तो सर्वांग का स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त है। और चलते हैं तो अपने नेत्र कमल से धरती पर देख करके ही तो चलते हैं, लेकिन पृथ्वी की धन्यता को कही गई तो चरण स्पर्श है, तुम प्राधान्य विपक्ष है और सब कुछ सुलभ है पृथ्वी को, लेकिन प्रधान पृथ्वी का सौभाग्य है चरण का स्पर्श। और इसी तरह से और वृक्षों पर भी चढ़ते हैं तो चरण का स्पर्श होता है, सर्वांग से भगवान वृक्ष की शाखा को पकड़ते हैं, वृक्षाकार का भी स्पर्श होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब फल फूल ग्रहण करते हैं और अपने नख से अपने श्रृंगार के लिए तोड़ते हैं तो यह प्रधान सौभाग्य है वृक्षों का। इसलिए जो प्रधान सौभाग्य है उसको कह रहे हैं, अन्यथा सबका सब प्रकार सौभाग्य। ऐसा नहीं किसी को चरण स्पर्श केवल सुलभ है, किसी को दृष्टिपात केवल सुलभ है, किसी को नख स्पर्श सुलभ है, नहीं सबको सब है, लेकिन सीधा सनातन मुस्लिम कहते हैं प्राधान्य अपेक्षा। तथा धरण्यादिशु सर्वेशु सदया अवलोक संभव्य भी तथा दुर्मादिशु अभी यथायथम पाद स्पर्श आदि संभव्य भी तेषु तेषु तत्त प्राधान्य अपेक्षा तथा सौभाग्य में जो कारण प्रधान है उसी को लिख दिया गया, बाकी सब प्रकार से सौभाग्य समझना चाहिए एवं अग्रे अभी। यही बात आगे भी आएगी, आगे जब भी वर्णन आएगा तो ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि सबको सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त। इमा श्री नंद ब्रज व्रत वर्तिम्य किमा सदा हृदवर्तित्व न अपरोक्ष। इमा जो श्लोक के अंत में आया है, नद्योदय खग मृगा सदैव अवलोक है। इमा का अर्थ है सदा हृदय वर्ती, भगवान के हृदय में जो वस्तुएं हैं तो उसको इमा कह रहे हैं। वो लेना पड़ेगा, इसमें नहीं है, लेकिन और जगह से इसको लेना पड़ेगा। इमा भुजयो अंतरेण आलिंग लेना वक्षसा इत्यर्थ, भुजयो आलिंग लेना वक्षसा इत्यर्थ अन्यतर व्याख्या। तुम जगह अपि शब्द समुच्चय, अपि शब्द भुजयो अपि, अपि शब्द है कि जैसे गोपियां आपके वक्षस्थल के स्पर्श धन्य है, तो अपि शब्द समुचय का अर्थ है आपके नख स्पर्श से, आपके वक्षस्थल के स्पर्श से, आपके चरण के स्पर्श से, सब तरह से गोपियां धन्य। अपि शब्द समुचय अर्थ में भुजयो अंतरेण सदयावलोकाधीश्च तासु धन्यता काराणाम पादस्पर्श नखादीनाम सर्वेषाम अपि प्राधान्यना सद्भावादिति तत्साम सर्वतो अधिकतर धन्यतोक्ता। जो वृक्षों को लताओं को पृथ्वी को इनके अंग से परम धन्यता निरूपण कर रहे हैं, गोपी जनों को सर्वांग सुलभ है भगवान का, इसीलिए उनके विषय में परम धन्यता उक्त इति अर्थ। श्री वैकुंठ सस्य वक्षसी नित्यम एवं बसंती लक्ष्मी त्वद वक्षस एवं स्प्रियति इति असंगतम एवं। एक प्रश्न होता है कि श्री वैकुंठ नाच के वक्षस्थल पर नित्य विहार करने वाली लक्ष्मी थी, आपके वक्षस्थल की स्प्रिया करें तो असंगत है। श्री तप चक्र तीन अयम अर्थ, इसलिए यहां ये अर्थ है, कृष्ण से असमर्धम माधुर्य भरम अवेक्षा तस्मय स्पृहती श्री तपश्चकार। यद्यपि महालक्ष्मी जी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर नित्य रहती है, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण रूप में अधिक मधुर है, अधिक रसिक है, तो इनके चरण रज की मैं स्पृहा करने के लिए आकर्ती है और तप कर रही है। जगवान छया श्री भरना चर तपो इति नागपत्नी भी वक्ष, यह बात नागपत्नियों के रूप से कही जाएगी आगे चल। लक्ष्मी जी चरण रज के उल्लासक अत्र स्त्रियों अति अधिक महात्म्यम ब्रज सुंदर नीला सुव्यक्तम हो, तो स्पष्ट हो गया कि स्त्री से भी लक्ष्मी जैसे भी अधिक सौभाग्य ब्रज गोपियों का है, सुव्यक्तम हो ये तो पूरा पूरा व्यक्त हो गया। जिस वक्षस्थल से गोपियां धान्य है प्रतिदिन प्रति रजनी भगवान के साथ नृत्य करती है, आलिंगन प्राप्त होता है श्री कृष्ण का, और उस आलिंगन की लक्ष्मी जी स्प्रिहा कर श्री जग स्प्रिहा स्प्रिहावती तीसरे स्नेहावती तो गोपियां परम धन। बारम्बार गोपियों की उक्ति आ रही है इस पर हरिश्री जी जो श्लोक लिखे हैं वो इस प्रकार का है, अभ्यासो जस्य जस्मिन् मनसि दृढतरो वर्तते वस्तु जाते तद्वक्ता तद्विनियात्यवश समये भूमि संस्कार योगा एवं गोपी गतात्मा सही बुहुरवदत गोपिकार धन्यतोति नो चेदुदिश्य रामं विपिन गतमुतौ तादृगुप्त्य शक्ति। तो उसमें भी है हरिश्री जी का दिया गया, अभ्यासो जस जस्मिन मनसी वर्तनु वर्तते वस्तु जाते, जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में दृढ़ अभ्यास आवेश रहता है तब वक्त्रा विनिर जाती अवश्य समय, अवश्य समय में उसके मुख से वो बात निकल जाती है, केवल भूमि संस्कार योगा जो बहुत बहुत संस्कार जमा हुआ है हृदय में तो बात मुख से निकल जाती है। इनमें गोपी गतात्मा सही विभु रजत अवगत गोपिका धन्य तोड़ती, गोपियों में जिनका मन अविष्ट है वे प्रभु गोपियों को धन्य बता रहे हैं, और वो भी अपने वक्षस्थल के स्पर्श से। यदि यह सिद्धांत नहीं होता कि भूरी संस्कार जोर से ही मनुष्य कुछ बोल देता है तो वन में वनवासियों की प्रशंसा करते समय भगवान अपने बड़े भाई से गोपियों की धन्यता करने पर कैसे कर सकते, कोई प्रसंग होता और स्त्रियों का इतने वर्णन किए होते तो चलो गोपियों का वर्णन कर देते, इन वनवासी जीवों का वर्णन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में अपने बड़े भाई से गोपियों की धन्यता बता रहे, तो सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण गोपी गतात्मा है, उनका मन गोपियों में बसा हुआ, नहीं तो बार बार क्यों गोपी की चर्चा आ रही है। तो यही है भगवान का प्रेम बसी वास्तु, प्रेम के वश में गोपियां जब दिन रात केवल कृष्ण के लिए विकल है तो कृष्ण भी गोपी जनों के लिए विकल है, इसी असिद्ध हुआ। इस प्रकार स्थान स्थान पर गोपियों धन्यता उक्त हुई है। तो प्रतिदिन की लीला है, लेकिन एक दिन वर्णन करके अन्य दिन के समझने के लिए कह देगा, इसको अन्य दिनात देशार्थम का अति देशार्थम, अन्य दिन भी इसी प्रकार से नए नए ढंग से प्रवेश करते थे। हरे कृष्ण।
सुखम
वृंदावन
श्रीनाथ
कृष्ण
प्रीतमनाथ
संचार अग्रह सरित्रोध सुसांगह खुशिर्गायति गायत्सु मदान्धानि समुदतये उपगीयमानचरितः श्रद्धिं सङ्कर्षणान्वितः
कलहंसानां
जति कुजितां